नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। सुरक्षा कारणों से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ज्यादातर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है।
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से 8वीं बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार औरंगाबाद के कुटुम्बा, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना।
पहले चरण के लिए हुए रिकॉर्ड 65% मतदान हुआ था। मतगणना 14 नवम्बर को होगी। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी कल उपचुनाव होंगे। ये सीटें हैं जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा। मतगणना 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना के साथ होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति अंगोला में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। अंगोला में भारतीय समुदाय के लगभग 8,000 लोग हैं। लगभग 200 भारतीय कंपनियां अंगोला में कार्यरत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लॉरेंसो के साथ व्यापक चर्चा की। राष्ट्रपति मुर्मू 8 से 13 नवम्बर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर हैं। वे कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बोत्सवाना जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सुबह नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समिति महासंघ नेफकब और सहकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। एक प्रमुख सामाजिक पहल के अंतर्गत असम मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य छठी अनुसूची के क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में बहुविवाह की प्रथा को गैर कानूनी करार देना और समाप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुनासांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगमे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी मुलाकात करेंगे। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 आज ब्राजील के बेलेम में शुरू होगा। ये सम्मेलन विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। वार्ता पेरिस समझौते के क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने और अनुकूलन योजनाओं पर केंद्रित होगी। सम्मेलन में भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डालेगा। भारत ने निर्धारित समय से पहले ही 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लिया है। शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंडमास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। गोवा के पणजी में कार्तिक ने रोमानिया के ग्रैंडमास्टर बोगदान जेनिल डीक को टाई ब्रेकर में हराया। कार्तिक अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदा, पी हरिकृष्णा और विश्व जूनियर चैंपियन वी प्रणव के साथ चौथे दौर में शामिल हो गए हैं। निशानेबाजी में भारत के अनीश भानवाला ने मिस्र के काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।